नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। क्या आपने कभी सोचा कि मन की बीमारी भी शारीरिक बीमारी कर सकती है, जिसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल से।
नमस्कार
डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या मन का किसी भी रोग से ग्रसित होना या मन का पीड़ित होना हमारे शरीर पर कोई प्रभाव डाल सकता है क्या?
बिल्कुल डालेगा, क्योंकि हरेक विचार, हमारे हरेक प्रत्येक विचार की शरीर के सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर प्रभाव पड़ता है। और अगर हमारे विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट होगी। और अगर कहीं पर भी हमारे विचार नेगेटिव है, चिंता, भय, निराशा, क्रोध, ऐसी कोई भी बात से वह संबंधित है, तो शरीर के सभी कोशिकाओं पर उसका बुरा प्रभाव होगा।
तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि मन तो लगातार एक ऐसी चीज है जो सोचता ही रहता है। कहा जाता है कि आई थिंक एक दिन में मनुष्य कितने ही विचार लेता
है। ऑलमोस्ट में 30,000 से 60,000 विचार,
30,000 से 60,000 विचार है। तो हर विचार हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है?
सबसे पहले तो विचार हमारे दिमाग पर असर करेगा, और दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में भी हाइपोथैलेमस विशेष रूप से जो भी हमारे विचार है तुरंत उस पर प्रभाव पड़ता है। और शरीर के अंदर दो प्रकार की प्रणाली है, एक तो कहेंगे वॉलेंटरी सिस्टम कि जो हमारे कंट्रोल में है, हाथ को ऊपर नीचे करना, सारी मस्कुलर सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। परंतु जो और इंटरनल सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेशन, हार्ट, किडनीज, लीवर, ये सारी जो सिस्टम है वो वॉलेंटरली हमारे कंट्रोल में नहीं, फिर भी उसका नियंत्रण दिमाग करता है जिसको इनवॉलेंटरी सिस्टम भी कहा। उसमें भी दो हिस्से हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरी है एंडोक्राइन सिस्टम। वो दोनों हमारे विचारों से बहुत इंटीमेटली रिलेटेड है
जी।
तो विचारों का इन पर नेगेटिव प्रभाव होता है, उसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो इससे कि पहले हम इसकी डिटेल में जाएं कि कौन सी बीमारियां कैसे हो सकती हैं, ऐसी कौन सी जो बीमारियां हैं शरीर की जो अक्सर मनुष्यों को, हम सबको बहुत कॉमनली होती हैं, जिनका ओरिजिन अगर पूरा नहीं तो काफी हद तक मानसिक भी हो सकता है।
इसे तो लिस्ट बड़ा होता जाता है
जी।
आज से अगर 20 साल पहले आप देखते मेडिकल किताबें तो कुछ बीमारियां थी, अभी हर 2-3 साल में वो बीमारी ऐड होती जाती। कुछ एक बीमारियों के मैं आपको नाम कहूंगा, जैसे कि सर दर्द, ऐसे माइग्रेन का दर्द, एसिडिटी, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऐसे ही एक पेट की बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस। हमारे एक स्किन के स्पेशलिस्ट ने तो कहा कि ऑलमोस्ट जो चमड़ी की बीमारियां हैं वो 80% साइकोसोमैटिक है, वो मन के द्वारा ही वो बीमारियां निर्माण होती है। यहां तक भी आज जो मेडिकल जर्नल्स में भी इस प्रकार के थीसिस है कि भल कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन स्ट्रेस से कैंसर कम से कम प्रेसिपिटेट हो सकता है, उसकी जो होने की संभावना है वो बढ़ सकती है।
तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां, जैसे आपने, मुझे भी एक ध्यान आ रहा है कि अब आज से 10-12 साल पहले ऐसी ऐसी एंटिटीज हार्ट की होती नहीं थी, या किसी और अल्जाइमर्स डिजीज, जैसे आप देखिए ये भी एक स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारी बताई गई है। और हार्ट अटैक का मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी 2-3 साल पहले ही एक रिसर्च आई है अमेरिका से, पूरे 52 कंट्रीज में जिन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने दिखाया कि तीसरे नंबर पर जो कॉजेटिव कारण है वो है मानसिक कारण हार्ट अटैक का। यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा नंबर का कारण है आफ्टर स्मोकिंग एंड डायबिटीज, वो मानसिक बीमारियां हैं। तो इसका मतलब मानसिक बीमारी हमारे शरीर पर बहुत गहरा और तेज प्रभाव डालती है।
बीमारी भी नहीं, वास्तव में मन की स्थिति भी,
मन की
चिंता करना।
जी हाँ, बिल्कुल आपने,
बार बार सोचना। और आज ये तो चलता ही, आज लोगों में किसी भी व्यक्ति को आप पूछो कहेगा मुझे टेंशन है। तो उसके कारण शारीरिक बीमारियां
बिल्कुल आए। हर व्यक्ति देखा जाए कि आम उसमें यही कहता है कि भाई बहुत टेंशन है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, टाइम अर्जेंसी लोगों को है हर चीज की। और 21वीं सदी में ये जैसे टाइम की ही कमी सबको हो गई है, और उसके कारण विचार इतने रोगग्रस्त हो गए हैं, मनुष्य का जीवन इतना विचलित हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी करती है क्या अकेले ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अल्सर्स का, या सिर्फ प्रेसिपिटेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है?
कुछ बीमारियों में प्रेसिपिटेट करने में भी कहेंगे, लेकिन कई बीमारियों में अपने आप भी कर सकता है। जैसे कि डायबिटीज है, एक सारी एंटिटी है जिसको कहते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज।
अच्छा,
कि जब आपको एक्सेस स्ट्रेस होती है तब ही ब्लड शुगर बढ़ जाती है
जी।
हो सकता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेस खत्म हो जाए तो आपका डायबिटीज खत्म भी हो सकता है।
ऐसी हाइपरटेंशन भी है,
हाइपरटेंशन में भी ना टेंशन की वजह से हो जाता है। एसिडिटी भी हो सकती है, सरदर्द तो बिल्कुल है, कि जब ना आपको एंग्जाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, तभी सर दर्द हो जाता है, माइग्रेन के अटैक्स हो जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में अपने आप में भी स्ट्रेस व बीमारियां रिलीज उसको निर्माण कर सकता है।
अभी मुझे एक बात ध्यान भी आ रही है कि एक स्टडी अभी हुई थी जिसमें दिखाया, आजकल आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑलमोस्ट जो 80% लोग आते हैं अस्पताल में, आपके पास आते हैं प्रैक्टिस में, हमारे पास आते हैं, उनमें देखा गया कि 80% लोगों का जो हॉस्पिटल विजिट है वो केवल दिमागी परेशानी के कारण आते हैं। जो शारीरिक रूप से आपके सामने अलग अलग की छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, लेकिन उसका रूट कॉज अल्टीमेटली देखा जाए वो दिमागी रूप से होता है। मैं समझता हूँ आप तो ऐसे बहुत प्रैक्टिस में देखते होंगे।
80% भी अच्छा है सचमुच, उन्होंने अगर माइन्यूटली उसको सारा स्टडी किया हो, एक एक की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को देखा हो, कुछ टेस्ट किया हो।
मैंने कहा कि कुछ अमाउंट उसमें जरूर होता
है। समझो हम 80% न भी कहे, क्योंकि आमतौर पर सभी डॉक्टर शायद एक्सेप्ट
ना भी करें,
तो एटलीस्ट हम ये तो जरूर कह सकते कि 60-70% जो बीमारियां हैं, जो हॉस्पिटल विजिट्स है, उसमें कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर जरूर होता है।
और अब तो एक मजे की बात मैं देखता हूं कई बार कि ये जो तनाव है, ये स्ट्रेस है, या ये कहें मानसिक रूप से जो परेशानियां हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल और मल्टी डिजीज को इकट्ठे जन्म देती है। लाइक डायबिटीज कई मरीजों में हम देखेंगे, उसके साथ हार्ट की परेशानी भी देखेंगे, कई लोगों को साथ में अल्सर भी उसके साथ होता है, अच्छा आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी जिसमें दिखाया
है साथ होती है।
ये काफी हैरानी वाली बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा गया है कि अगर तनाव एक कारण है या मानसिक बीमारी एक कारण है शारीरिक बीमारी की, तो ये इंस्टेंटेनियसली क्यों नहीं होता?
अच्छा,
अगर कोई बीमारी है तो उसको होना चाहिए, जैसे कोई भी कॉज है वो तो इमीडिएटली इफेक्ट डालेगा ना।
नहीं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर वो तुरंत बीमारी करता है तो हमको ये साइड सेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कि लोग ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि भी जब भी मुझे चिंता होती है, टेंशन हो जाता है, शारीरिक बीमारियां हुई, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हमें बहुत ही बड़ी रिजर्व कैपेसिटी दी है। जैसे हार्ट की बीमारियां हैं तो हमें जो मिनिमम जरूरत है स्वस्थ जीवन जीने के, उससे 4-5 गुना ज्यादा पावर कुदरत ने हमको दी है। और भी किडनी को भी अगर हम देखें, तो अगर आपकी 25% किडनी भी फंक्शन कर रही है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती। तो कहेंगे कि 4 गुना ज्यादा कुदरत ने हमें रिजर्व कैपेसिटी दी है। तो तनाव के कारण मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वो जो रिजर्व कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, और जब वो मिनिमम तक पहुंच गए, उससे भी कम हुई, तब आपको बीमारी के चिन्ह नजर आते। बैंक बैलेंस जैसा है,
बैंक बैलेंस जैसा, मतलब एक घड़ा भर गया तो उसके बाद एकदम मैनिफेस्ट करने लगेगा।
आती है
इसको डॉक्टर साहब कई बार आइसबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है कि अंदर बहुत डीप अंदर व्यक्ति घोर तनाव में होता है, लेकिन शारीरिक रूप में धीरे धीरे मैनिफेस्ट करना
पड़ता है, थोड़ा सा ही दिखाई देता है।
तो डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि मल्टीपल डिसऑर्डर्स शरीर के हो सकते हैं मानसिक बीमारियों से, ये तो हमें पता लगा कि शरीर का ऐसा लगता है कोई भी अंग नहीं है जो मन की बीमारियों से प्रभावित ना हो, लेकिन कोई कॉमन हर व्यक्ति जाना चाहेगा ऐसा क्यों होता है? कोई मैकेनिज्म होता होगा, कोई तरीका होता होगा, क्योंकि ये चीज इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती, लोग मानेंगे नहीं इस चीज को, तो क्यों मेडिकल साइंस इसका क्या एक्सप्लेनेशन देती
है? हमारे में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक काम करती है, और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से है, एक तराजू की तरह है, एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरी है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, और स्वस्थ जीवन के लिए इसका बैलेंस होना चाहिए। और वर्तमान युग में देखते हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत फास्ट काम कर रही है, और सिंपैथेटिक जब ज्यादा काम करती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, और भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव मसल टेंशन में आ जाएंगे। और आज देखो तो सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर जैसी है, तो जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, वो ब्रेक की तरह है, कि थोड़ी सी अगर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, कि जो सारी हमारी एनर्जी को, रिसोर्सेस की बचत करती है। और वर्तमान युग में आज हमारा पैर सदैव एक्सेलरेटर पर है, अगर कोई कंटिन्यूअस एक्सेलरेटर पर पैर रख करके गाड़ी चलाए तो उसकी क्या हालत होगी?
बर्नआउट हो जाएगा।
हाँ, तो ऐसी ही हमारी हालत हुई है और उसके कारण ये शारीरिक बीमारियां हो रही है। और एक है हमारे में एंडोक्राइन सिस्टम है, कि जो ऐसी कई ग्रंथियां हैं, जैसे दिमाग में पिट्यूटरी है, गले में थायराइड ग्रंथि है, पेनक्रियास जो इंसुलिन निर्माण करता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल्स है, ये सब छोटी छोटी ग्रंथियां हैं कि जो अपना स्राव सीधा खून में भेज देती है, बस कुछ सेकंड में उसकी इफेक्ट होती है सारे शरीर पर। तो तनाव के कारण ये एंडोक्राइन सिस्टम में इम्बैलेंस आता है, इसको ऑर्केस्ट्रा भी कहा, कि भी ऑर्केस्ट्रा की तरह है, अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट ठीक से न बजे तो वो मजा नहीं
रहेगा, खराब हो जाता है।
और हाइपोथैलेमस ही उसकी मास्टर ग्रंथि है कि जिसका हमारी भावनाओं इमोशंस के साथ गहरा संबंध है। तो थोड़ा भी जब हमारे नेगेटिव इमोशंस निर्माण होते हैं तो यह एंडोक्राइन सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब तो यह भी है कि भी ब्रेन के जो ट्रांसमीटर्स है, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहा, कि ब्रेन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उस पर भी बुरा असर होता है और उसके कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती।
तो बेसिकली देखा जाए कि ये हमारे इंटरनल प्रोसेस को, हमारी थिंकिंग बहुत अफेक्ट करती है। और ये एक्सेलेटर की तरह अगर हम दबा के रखें तो थिंकिंग इतनी फास्ट चलती है और नेगेटिव वे में जाके हमारे बॉडी को बहुत
अल्टीमेट
हार्म कर देती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत क्लियर हुआ कि मन की सोच, मन की स्थिति हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालती है, बीमारियां करती है। साइंस इसको प्रूव कर चुकी है और ये हमारी समझ में अब है। तो इसका एक इलाज भी होना चाहिए। हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इसका कैसे इलाज किया जाए, इसके लिए रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए आप क्या स्टेप्स हमें बताना चाहेंगे।
पहले तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आम तौर पर आज अगर देखा जाए कि भी कोई एक जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के पास इस प्रकार की बीमारियां लेकर के जाता है तो अधिकतर फिजिशियन जानते हैं इसको, लेकिन ट्रीटमेंट में तो उसको सिर्फ कुछ मेडिसिन देंगे, कभी एसिडिटी है तो एंटासिड्स दे देंगे, भी हेडेक है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। तो ये भी ट्रीटमेंट ठीक है, परंतु इससे क्या होता है कि एक तो जब तक आपने ट्रीटमेंट दी पेशेंट ठीक है, उसका रूट कॉज तो वहीं पर है, तो जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ेंगे तो वह रिलैप्स हो जाएगा, वो बार बार वो बीमारी को लेकर के पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। और एक चीज होती है कि जो आमतौर पर समझ में नहीं आती है, जिसको कहा है शिफ्ट ऑफ सिम्टम्स, कि आपने एंटासिड्स दिए तो हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां दी, एक साल के बाद उसको थायराइड की बीमारी हो जाएगी। डॉक्टर समझता है कि ये तो अलग अलग बीमारियां हैं जिससे मुझे ट्रीट करना है। डॉक्टर मुहूल ने एक बहुत ही अच्छा केस ऐसा डिस्क्राइब किया था कि एक महिला को इसी प्रकार शिफ्ट ऑफ सिम्टम्स हो रहे थे, लेकिन करीब 3 साल के बाद उसके फिजिशियन को यह ध्यान आया कि हो सकता है कि इसे कुछ सचमुच इमोशनल प्रॉब्लम है, कहीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। और जब उसका इलाज करवाया गया ठीक से तो वह सभी बीमारियों से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि न केवल उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाए, परंतु एक टोटली होलिस्टिकली अगर उस कॉज को हम देखें, उसका अगर इलाज करें और स्पेशली मन का इलाज किया जाए तो उन्हें 100% रिलीफ मिल सके
डेफिनेटली, क्योंकि ये बात हो ही रही है कि शरीर की वो बीमारियां जिनका रूट कॉज मन है, तो रूट कॉज मन का इलाज ही होगा। तो मन के इलाज के लिए आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
मन के इलाज के लिए पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार पेशेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि हमको तो शारीरिक बीमारी
है,
परंतु अगर पेशेंट इस बात को एक्सेप्ट करे कि अगर मैं मन को ठीक करूंगा तो इसमें मुझे रिलीफ मिलेगी, डॉक्टर्स भी अगर उन्हें कन्विंस करे, और फिर एक तो व्यक्ति को जिसको सेल्फ हेल्प कहते हैं कि भाई कोई एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं भी थोड़ा सा अपने विचारों को परिवर्तन करने का सोचे, उनमें जो उनके इमोशन से उसको सोचे। मेरे एक मित्र थे कि जिनको डायबिटीज हो गया, और जब थोड़ी हम ऐसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ऐसी बातों को सुना भी तो फिर सोचने लगे कि भी क्या हो सकता है इसमें। तो उन्हें तुरंत, क्योंकि ये बड़े रूप में था तो उन्हें ये चीज मिल गई कि उनको एक बदले की भावना हो रही थी। उनको बिजनेस में उनके पार्टनर ने बहुत बड़े अमाउंट में चीट किया था, तो कॉन्स्टेंटली वो इसी को सोचते थे, कहते थे मैं ऑलमोस्ट दिन में 75% यही सोचता था कि कैसे बदला लूं, और इससे हो सकता था कि मुझे बीमारी हुई। जब उन्होंने बस इसको लेट गो किया कि तो हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं उसको माफ कर देता हूं, जो हुआ कोई भी कारण से हुआ, अब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मैंने जब उनको माफ किया और ये फीलिंग से मैं उपराम हो गया, तो बस थोड़े दिन में उनका डायबिटीज एकदम कंट्रोल में आ गया, और अब तक भी कंट्रोल में है। भले चेकिंग कराते रहते हैं लेकिन अब भी उनका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहता है।
फर्स्ट स्टेप तो आपने बताया कि जो हमारी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करना, जो परिस्थिति आज चलती है उसको इजीली कहना कि इसमें जो बेस्ट मैं निकाल सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, और इसमें
और जब अभी एक बार आपने एक्सेप्ट किया, फिर कैसे हम वो स्ट्रेस को एक तो मैनेज करें। जैसे भी आपको वरीज है बहुत, तो अभी वरीज का हम सॉल्यूशन क्या करें, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। और एक सॉल्यूशन है कि आप एटीट्यूड्स को चेंज करो,
पॉजिटिव थिंकिंग आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि ये एक अक्सर बहुत डिफिकल्ट माना जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब हर चीज में सकारात्मक भाव को
लाना,
अपने हर सोच में सकारात्मक चीज को देखना। क्योंकि हमें याद है आपने अपने कुछ पिछले एपिसोड में हमें बताया था कि सिचुएशंस को जो आती है वो जाने के लिए ही आती है, नेगेटिव सिचुएशन भी आती है वो आएगी भी तो जाने के लिए आएगी, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढ लेना नेगेटिव के अंदर भी, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। उससे एक्सेप्टेंस की भावना स्वतः ही आ जाती है।
आपने जो कहा मोहित, उससे मुझे ये भी याद आया, कहते हैं कि गॉड एंड टाइम आर बेस्ट
हीलर्स,
तो समय है वह भी हीलिंग करता है।
बिल्कुल,
साथ साथ में हम पॉजिटिव थिंकिंग का यह भी अर्थ है कि हर परिस्थिति में एडवांटेज को ढूंढे।
जी हाँ,
किसी भी विकराल परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें छोटा सा भी कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होता है। उसको अगर हम ढूंढ निकाले और बार बार रिपीट करें।
जी हाँ,
मैं तो ये भी कहता हूं कई पेशेंट्स को कि आप लिखो, क्योंकि जो मन है वो नेगेटिव की ओर जाता है। भले आपको 10% एडवांटेज, अगर 90% डिसएडवांटेज है तो उसी को आप सोचेंगे, बट एडवांटेज को आप लिखो भी, तो भी माइंड है वो रिलैक्स। और एक चीज है कि रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करो।
जी हाँ,
कि जो जनरल है। जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा मुश्किल भी लगता है, परंतु अगर रिलैक्सेशन कोई हम सहर टेक्निक को सीख ले तो रिलैक्सेशन भी एक स्ट्रेस का एंटीडोट है।
ये प्रैक्टिकल एग्जांपल रिलैक्सेशन,
ये जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की विधि है कि जिसमें आप आराम कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, शवासन की तरह भले लेट जाए, और फिर पैरों की उंगलियों से सर तक अगर एक एक हिस्से को बहुत ही शांति से फोर्स नहीं करना है, जैसे कि आप और किसी को सजेशन देते हैं, ऐसे ले बॉडीली पार्ट्स को सजेशन दे कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, और अलग अलग तरीके से उसको बांट सकते हैं। मैंने बॉडीली पार्ट्स को 16 पार्ट्स में बांटा है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, परंतु एक सिस्टम बना ले कि पैरों से सर तक जाना है या सर से पैर तक जाना है, और उसको अगर हम ऑर्डर्स देते रहे और जो भी फीलिंग होती है वो अच्छी ही है, अगर व्यक्ति पूरा प्रोसेस करे तो भी, क्योंकि मांसपेशियां रिलैक्स होती है और मांसपेशियां रिलैक्स होगी तो मन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।
डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये एक टेम्परेरी रिलीफ में होता है, क्योंकि ये जब हम कहते हैं रूट कॉज हमारा माइंड है, तभी हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में हम ऐसे विषय की बात कर रहे हैं, और माइंड को बड़े प्यार से समझाना, उसको कहना, उसको ऑर्डर तो आप नहीं कर सकते, उसको समझा ही सकते हैं। अगर इस प्रकार की हम शारीरिक टेक्निक्स यूज करते हैं तो टेम्परेरी आराम तो हो जाता है, जैसे कि आप कहीं घूमने चले गए बाहर, माइंड लगेगा बहुत सूदिंग है, रिलैक्स होगा, लेकिन मन के विचार का परिवर्तन करना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, एक अलग चीज हो जाती है। और ऐसी चीज में मुझे ध्यान आता है कि रिलैक्सेशन के साथ मेडिटेशन का एक बहुत गहरा संबंध आ जाता है, जिसका अक्सर मैंने कई किताबों में पढ़ा भी है और देखा भी है। तो क्या आप चाहेंगे बताना हमें कि कोई इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन भी होता है, कुछ ऐसा तरीका मेडिटेशन का जिससे हमारा मन हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाए?
डॉक्टर मोहित, पहले तो मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि इट्स वेरी ट्रू, मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि जब रिलैक्सेशन कराते हैं ऐसे तो बोल थोड़ा तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंट ये भी कहता है कि भाई मैं तो अपने आप को फूल कर रहा था, सचमुच शायद नहीं हो रहा था, मैं तो टेंशन में हूं, मुझे तो इतनी नर्वसनेस है, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊंगा। तो ऐसे बात बिल्कुल ठीक है कि यू नो इट्स अ लिटिल टेम्पररी फिजिकल, फिर भी कुछ लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। और जो परमानेंट बात है वो मेडिटेशन इसलिए है क्योंकि मेडिटेशन से हमारा अप्रोच चेंज होता है। समझो आपने रिलैक्सेशन की आधा घंटा, तब तक चलो ठीक है, फिर जब आप घर में गए और बच्चों का प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट है, तो फेस करना कैसे करेंगे। तो मेडिटेशन क्या करता है, आपके एटीट्यूड्स को चेंज करता है, और एटीट्यूड को चेंज करने के कारण हमने देखे सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहीं किस्सों में, कि जो पति पत्नी कहीं समय से बात नहीं कर रहे थे, वन देख करके उनको अंदर में कुछ हो जाता था एक दूसरे को, तो ऐसे किस्सों में भी उन्होंने मेडिटेशन किया तो क्योंकि उनकी एटीट्यूड चेंज हो गई, और एटीट्यूड चेंज होने से उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। और मेडिटेशन से और एक जो फायदा होता है कि हमारी बिलीफ सिस्टम में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि एक सिंपल बिलीफ, ये बिलीफ कि आई एम फिजिकल, अधिकतर हम सोच देखते हैं कि जो अपने आप को आईने में देखते हैं हम वही मैं समझ करके काम करते हैं, तो जो हमारी सिस्टम है कि मैं फिजिकल हूं, वह बिलीफ से भय निर्माण होगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो भय है। परंतु यह जो बिलीफ आती है कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, और जैसे ये बिलीफ आती है ध्यान के अभ्यास में कि आई एम एटर्नल, आई एम स्पिरिचुअल, तो वो भय खत्म हो जाता है। और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से भी फायदा होता है। हम ये समझ पाते हैं कि एक शांति का अखूट खजाना आप में ही समाया हुआ है। वास्तव में आपके अंदर आप झांक करके देखो तो शांति का एक बहुत ही विशाल आसमान छाया हुआ है। इसमें हमारी गलती है कि हम 5 फुट भी ऊपर नहीं उठते हैं।
तो स्पिरिचुअल बीइंग जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको स्पिरिचुअली कहा गया है, आत्मा के रूप से भी कहते हैं, साइंस में हम लोग साइकी के रूप से भी कहते हैं, तो इसकी ओरिजिनल नेचर, इसकी ओरिजिनल क्वालिटीज, प्योरिटी, पीस, लव,
बिल्कुल
ये जब क्वालिटीज बाहर आती हैं तो मन स्वतः ही आप कहते हैं कि शांत होता चला
और वो सदा के लिए रहेगा। जैसे रिलैक्सेशन में कुछ समय फायदा हुआ
जी हाँ,
और ये जो अवेयरनेस है उसको आप मेंटेन कर, रिलैक्सेशन बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि सवेरे एक बार किया, शाम को किया, सारा दिन तो नहीं कर सकते, परंतु ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऐसी चीज है कि मैं रेलवे स्टेशन पे भी खड़ा हूं तो भी मैं ये बात को ला सकता हूं कि भी आई एम अ पीसफुल बीइंग। हाँ, ये शरीर एक साधन के रूप में उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ।
तभी कहा जाता है कि मेडिटेशन या रिलैक्सेशन मच मोर देन यू नो मेडिटेशन मच मोर देन रिलैक्सेशन, ये एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है।
बिल्कुल,
स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कोई भी एक्सटीरियर चीज आती है, दैट एक्सटीरियर परिस्थिति जिसे कहते हैं, वो एक्सटीरियर ही रह जाती है, दैट डज नॉट अफेक्ट माई माइंड, इट डज नॉट एंटर मी। मेरा अपना इंटरनल स्टेट माइंड का बहुत काम रहता है, पीसफुल रहता है, शांत रहता है, और इस कारण कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव परिस्थिति आती है वो मेरे सोच पर उतना प्रभाव नहीं डालती
और मैं डिटैच भी हो पाता,
डिटैच होके,
जो आमतौर पर हम डिटैच नहीं हो पाते हैं। अगर थोड़ा भी ध्यान का अभ्यास आप करते हैं तो आप अपने आप को सहज ही डिटैच कर पाते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने भी मेडिटेशन अपनी लाइफ में जरूर प्रैक्टिस किया है, हमें ज्ञात है आप ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से कितने ही सालों से एसोसिएटेड रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है, उसमें आप हमें शॉर्ट में बता पाएंगे कि आप किस प्रकार से मेडिटेशन करते हैं?
मेडिटेशन का अभ्यास करना है तो बस ये 3 शब्दों को याद रखना है। ये 3 शब्द है टर्न, देन ट्यून एंड टेस्ट, कि हमें कॉन्शियसनेस को टर्न करना है। जो हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस है उसे हम टर्न कर करके उसको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की ओर ले जाए। जैसे हम अपनी कार चलाते हैं और आपको राइट या लेफ्ट टर्न करना है तो सबसे पहले हम स्पीड को कम करते हैं, तो ऐसे ही ध्यान में भी हम शांति से बैठते हैं। राजयोग का अभ्यास ऐसा है कि जिसमें कोई विशेष आपको पद्मासन लगा करके या तो डिफिकल्ट आसन में बैठने की आवश्यकता, एक चेयर में भी कंफर्टेबली बैठिए, स्टेबल पोस्चर हो, और फिर विचारों की गति को थोड़ी सी शांत करिए, कई तरीके से कर सकते। फिर उसको हमें टर्न करना है। एक जो सबसे बड़ी गलती होती है मेडिटेशन में, लोग ये समझते हैं कि ध्यान करते तो कुछ नहीं सोचना है, विचार शून्य हो जाए, वह नहीं हो सकता है। उसे हमें आत्मचिंतन की ओर, परमात्मा चिंतन की ओर टर्न करना है, और जैसे ही आप टर्न करते हैं और उसमें एब्सॉर्ब हो जाते हैं, शुरू में तो और विचार भी चलते हैं, परंतु करते करते जब आप एब्सॉर्ब हो जाते हैं उसमें तो तुरंत ही उसका अनुभव करने लगते हैं, शांति का अनुभव करते, हल्केपन का अनुभव करते, तो एक प्रकार से टेस्ट है। और जैसे आप टेस्ट करेंगे तो और एब्सॉर्ब होंगे, जैसे एक प्रोसेस है कि जिसमें आप कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो अनुभव हुआ, अनुभव हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा, और 5-7 दिन भी कोई अच्छे से अभ्यास करे तो एक गहरी एब्सॉर्प्शन की स्थिति है वो राजयोग के अभ्यास में प्राप्त कर पाता है। सिर्फ उसमें थोड़े से ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब टर्न करते हैं तो मुझे क्या चिंतन करना चाहिए। जैसे मैंने भी शुरू में राजयोग का अभ्यास सीखा तो वह जो थॉट प्रोसेस थे वो बहुत कम थे, पता नहीं था ज्यादा ज्ञान, तो थोड़े ही समय में लगता था अभी आगे क्या करना है, परंतु जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा तो आधा घंटा, 1 घंटा भी उसमें पूरा खो जाना वह बिल्कुल संभव हो पाया।
तो ये डॉक्टर साहब जो आपने 3 स्टेप्स हमें बताए, ये स्टेप्स हमें अपने स्पिरिचुअल बीइंग यानी सोल के साथ प्रैक्टिस करने हैं।
हाँ,
तो इसके अंदर जो हम सोच लाते हैं, जो एनर्जी डिराइव करते हैं या थॉट्स लाते हैं, ये क्या हमारे आत्मा से कंसर्न होते हैं या आत्मा परमात्मा से योग लगाते हैं? क्योंकि आत्मा का जनरली योग परमात्मा से ही कहा जाता है, कोई स्पिरिचुअल बीइंग का या आत्मा का शरीर किसी शरीर से योग तो नहीं हो सकता।
तो वो योग तो परमात्मा से ही है, परंतु पहले इसके चिंतन करते करते उस स्थिति में स्थित होना होगा कि मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूं।
जी हाँ।
यह शरीर है एक साधन है, उसका मैं उपयोग कर रही हूं, जैसे कि शरीर एक घर जैसा है और मैं आत्मा वो घर में रहने वाला व्यक्ति हूं। यह शरीर एक मंदिर जैसा है, परंतु आत्मा जो है वह मंदिर में मूर्ति के समान है। तो उस भेद को समझना है, कि शरीर फिजिकल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, अलग अलग चिंतन से उसकी हम गहराई में जाते हैं। और जब बार ये संभव हुआ फिर परमात्मा से मिलन संभव है। जैसे कि दो तारों को आपको जोड़ना है, एक तार पर कोटिंग नहीं है, दूसरे पर है, आपने जोड़ दिया तो करंट पास नहीं होगा, दोनों से उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो निकालना पड़ेगा, तब करंट पास होगा। तो ऐसे ही आत्मचिंतन से फिर परमात्मा के साथ जोड़ सके।
डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सरल रूप से बताया कि मानसिक बीमारियां, हमारे शारीरिक बीमारियां कैसे कर सकती है और उसका निवारण कैसे हो सकता है। क्या आप शॉर्ट में फाइनल कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे?
मैं सभी दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान युग में ये साइकोसोमेटिक बीमारियां बहुत बढ़नी ही है, तो इसलिए भल आप थोड़ी कम नींद करो परंतु ध्यान के लिए जरूर समय निकालो, और ध्यान की भले और भी कुछ विधि को सीखो, और फिर अपने आप के लिए, जैसे टेलर मेड कपड़े होते हैं हमारे, जैसे आप अपने लिए भी एक ध्यान की विधि को देखिए कि जो आपके लिए सूट होती है, और प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, जैसे आप खाने के लिए समय निकालते, स्नान करने के लिए समय निकालते, ऐसे ही ध्यान के लिए भी जरूर समय निकालिए, तो ये बहुत सारी साइकोसोमेटिक बीमारियों से आप बच जाएंगे, और अगर हुई भी है तो उसमें भी मेडिटेशन आपको बहुत बहुत मदद करेगा।
तो आपने देखा कि शारीरिक बीमारियां केवल शरीर की नहीं होती, लेकिन उनका रूट कॉज जो होता है, उनकी जड़ होती है मन के अंदर होती है, और हम जाते रहते हैं डॉक्टरों के पास, क्योंकि हर बीमारी के लिए एक गोली तो आज बनी हुई है। पर आप क्या गोलियां खाके ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं? आप देखिए कि एक ऐसी गोली खाइए जिसे कहते हैं डी स्ट्रेस पिल। अपने मन को एक शांति की, खुशी की, प्यार की गोली खिलाइए, अपने मन को समझाइए, उसको डांटिए नहीं, उसको प्यार से मोड़िए। अपने आप को शरीर न समझ आत्मा समझिए, और जब आत्मा अपने स्वयं भाव में स्थित हो जाती है तो मन बिल्कुल शीतल हो जाता है, और कितनी ही शारीरिक बीमारियों से हम वैसे ही मुक्ति पा लेते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हम अपने अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।